और करना है तो इल्म में रसूख पैदा करेंगे। रुकू नंबर दो पे चलेंगे। आयत 153 से 162 है, इल्म में पुख्तगी हासिल करें। यह है मैसेज। कैसे? यसअलुक अहलुल किताब युनज़्ज़िलु अलैहिम, आपसे ये अहले किताब दरख्वास्त करते हैं कि आप इनके पास कोई आसमानी किताब लाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तो उन्होंने इससे बहुत बड़ी दरख्वास्त की थी कि हमें खुल्लम खुल्ला अल्लाह को दिखा दें। बस इन पर इनके जुल्म की वजह से कड़ाके की बिजली आ पड़ी। फिर बावजूद इसके कि इनके पास बहुत दलीलें पहुंच चुकी थीं, उन्होंने बछड़े को अपना महबूब बना लिया। लेकिन हमने ये भी माफ़ फरमा दिया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खुला गलबा और सरीह दलील अनायत फरमाई, और इनका कॉल लेने के लिए हमने इनके सरों पर तूर पहाड़ खड़ा कर दिया और इन्हें हुक्म दिया कि सजदा करते हुए दरवाजे में जाओ, और ये भी फरमाया कि हफ्ते के दिन में तजावुज़ न करना, और हमने इनसे सख्त कौलो इकरार लिए। ये सजा थी बस अब इनके अहद छिकने के और अहकाम इलाही के साथ कुफर करने के और अल्लाह के नबियों को नाहक कत्ल कर डालने के बायस, इस सबब से कि यूँ कहते थे कि हमारे दिलों पर ग़िलाफ़ है, हालांकि दरअसल इनके कुफर की वजह से इनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, इसलिए ये कदरे कलील ही ईमान लाते हैं। और इनके कुफर के बायस और मरियम पर बहुत बड़ा बुहतान बांधने के बायस और यूँ कहने के बायस कि हमने अल्लाह के रसूल यानी मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया, हालांकि ना तो उन्होंने उसे कत्ल किया ना सूली पर चढ़ाया, बल्कि इनके लिए वही सूरत बना दी गई। यकीन जानो कि हज़रत ईसा के बारे में इख्तलाफ करने वाले इनके बारे में शक में हैं, इन्हें इसका कोई यकीन नहीं सिवाय गुमान की बातें यानी तखमीने की बातें, गैस वर्क जिसको इंग्लिश में कह लें, सिवाय तखमीनी बातों पर अमल करने के। इतना यकीनी है कि उन्होंने इन्हें कत्ल नहीं किया, यानी अल्लाह कहते हैं ईसा को इन्होंने कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने इन्हें अपनी तरफ उठा लिया, और अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और पूरी हिकमतों वाला है। अहले किताब में से एक भी ऐसा न बचेगा जो हज़रत ईसा की मौत से पहले इन पर ईमान न ला चुके, और क़यामत के दिन आप इन पर गवाह होंगे। जो नफीस चीज़ें इनके लिए हलाल की गई थीं वो हमने इन पर हराम कर दी, इनके जुल्म के बायस और अल्लाह की राह से अक्सर लोगों को रोकने के बायस, और सूद जिससे मना किए गए थे इसे लेने के बायस, और लोगों का माल नाहक खाने के बायस, और इनमें जो कुफार हैं हमने इनके लिए अलमनाक अजाब मुहैया कर रखा है। लेकिन इनमें जो कामिल और मजबूत इल्म वाले हैं, जो इस पर ईमान लाते हैं जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और नमाजों को कायम रखने वाले हैं और ज़कात को अदा करने वाले हैं और अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं, ये हैं जिन्हें हम बहुत बड़े अजर अता फरमाएंगे। कितना खूबसूरत रुकू था। क्या सीखा? आप देखिए कि बनी इसराइल पर लानत की जब भी बात होती है ना, तो लोग ज़रा सा रिजेंटमेंट करते हैं, तो इस रुकू को आप नोट कर सकते हैं, असबाब हैं इसमें, यानी रीजंस व्हाई अल्लाह सुब्हान तआला इज एंग्री। अल्लाह सुब्हान तआला बनी इसराइल से इतने नाराज़ क्यों हैं? हो सकता है किसी पहली दफ़ा कुरान सुनने वाले के दिल में आ रहा हो कि सूरह बकरा से लेके आज तक इन्हीं की बातें हो रही हैं, तो आइए ज़रा नोट कीजिएगा बड़े बड़े असबाब जो हमने इसमें देखे। नंबर एक, बनी इसराइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आसमानी किताब लाने का मुतालबा करते थे लेकिन किताब को नहीं माना। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला को देखने का मुतालबा किया इन्होंने, फिर हज़रत मरियम पे बोहतान लगाया इतनी पाकदामन औरत पे, क्या ये छोटा जुर्म है? बनी इसराइल ये कहते हैं कि हमने ईसा को कत्ल किया। अब देखिए हज़रत ईसा के बारे में यहूद कहते हैं हमने उनको कत्ल किया, नसारा कहते हैं वो अल्लाह का बेटा था। सच्ची बात किसकी है? वो माँ कतलूहू यकीनन, अल्लाह कहता है इन्होंने इसको कत्ल नहीं किया। फिर इनका अगला जुर्म क्या था? नबियों को नाहक कत्ल करते थे और असहाबे सब्त यानी हफ्ते के दिन अल्लाह की हदों से तजावुज़ किया, तो क्या ये थोड़े जुर्म है? आपको मुझे थोड़े लगेंगे अगर हमें अल्लाह और उसके दीन से मोहब्बत ना हुई, और जिनको अल्लाह से मोहब्बत है उनको तो पता है आपके बाप को कोई बुरा कह दे तो कैसा लगता है, ससुराल वाले मैके का ताना दे दें तो कैसा लगता है। बस यही प्यार सहाबा को और मोमिनों को अल्लाह से और उसके दीन से होता है और उसके रसूल से। फिर आयत 158 से 160 में एक और फ्लो चार्ट देखिए, इसमें हज़रत ईसा के आसमान पे उठाए जाने की बात हुई और ये बता दिया गया कि हर ईसाई हज़रत ईसा के दोबारा आने के बाद ईमान लाएगा, हज़रत इब्ने अब्बास का कॉल था कि हर यहूदी और ईसाई अपनी मौत से पहले नबी सल्लम पर ईमान ले आता है। तो ये जो है ना उसकी ज़मीर हो कि इस पे इश्काल है, लेकिन बहरहाल हमें इसके लिए तो बस यही दुआ करनी है कि अल्लाह ज़िंदगी में हमें ज़रिया बना दे गैर मुस्लिमों के मुसलमान होने का। फिर इसमें हमने देखा कि यहूद की सज़ा पाकीज़ा चीज़ें इन पर हराम की गई, यानी जब कोई कौम दीन के अंदर कमी बेशी करती है तो अल्लाह हलाल चीज़ों को भी हराम कर देता है उन पर। फिर इसके बाद एक हदीस है सूद के बारे में, आप यहाँ देख रहे हैं ये तीसरा मुकाम है कुरान पाक का जहाँ सूद का मौजू आया। तो बस एक हदीस सुन लीजिए, फैसला आपका अपना है, कुरान तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको मुझे डोस देता है कि अपनी ज़िंदगियों को काले धन से पाक कर लो। क्या इब्ने मसूद से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाना आकिलर रिबा व मोकिलहु व शाहिदही व कातिबहु, सूद के खाने वाले पर, खिलाने वाले पर, इसकी गवाही देने वाले पर और इसका हिसाब लिखने वाले पर लानत भेजी है। ये इब्ने माजा की रिवायत है 2277। अल्लाह ताला इससे हर एक को पाक रखे। और इसी तरह आयत 162 में यहूद के नेक लोगों को बशारतें मिली, कामिल ईमान वाले को अल्लाह ताला कभी खाली नहीं छोड़ता, उसको अच्छी चीज़ों की बशारत मिलती है। ओवरऑल इस पूरे रुकू में हमने अल्लाह की रज़ा पाने के अमाल क्या सीखे, इल्म और हिकमत सीखना है, नियत करते। और आपको पता है कि जो कोर्स हम आपको रमज़ान के बाद ऑफ़र करने वाले हैं सबीलुल जन्ना, उसमें एक लेसन 2 घंटे प्लस का है, तो क्या होगा वो? अभी से बस चुपके चुपके दुआ करें अल्लाह मुझे सबीलुल जन्ना पे चलाना, नियत कर ले अभी से। जिस दिन लिंक ऑन हुआ SJ23 का, आई विल बी द नंबर वन। लेकिन असल बात यह है कि अल्लाह हमें नसीब करे, मौके बहुत सारे आएंगे खैर के, लेकिन पता नहीं हम लब्बैक कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो क्या पता चला, इल्म और हिकमत सीखना है, फिर कुरान में बयान अकायद पर पुख्ता ईमान लाना है, पुख्ता ईमान वालों की खसूसियात अपने अंदर लानी है, और नाजायज़ माल से बचना है। ये बहुत बड़ी रुकावट है हमारे और इल्म के बीच में, अल्लाह के रास्ते से नहीं रोकना, और पुख्ता ईमान वालों के लिए अजर है इस बात का यकीन रखना है। रुकू नंबर 3 है 163 से 171, अल्लाह के रास्ते में खुशखबरियाँ और तंबीहात, यानी वार्निंग्स एंड ग्लैड टाइडिंग्स इन दी वे ऑफ अल्लाह सुबहान तआला। इन्ना ओहैना इलैका कमा ओहैना, यकीनन हमने आपकी तरफ इस तरह वही की जैसे कि नूह अलैहिस्सलाम और इनके बाद वाले नबियों की तरफ की, और हमने वही की इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम और इनकी औलादों पर, और ईसा अलैहिस्सलाम और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान अलैहिस्सलाम, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई, और आपसे पहले के बहुत से रसूलों के वाक़यात हमने आपसे बयान किए और बहुत से रसूलों के नहीं भी किए, और मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने साफ तौर पर कलाम किया, हमने इन्हें रसूल बनाया, खुशखबरियां सुनाने वाला और आगाह करने वाला, ताकि लोगों की कोई हुज्जत और इल्ज़ाम रसूलों के भेजने के बाद अल्लाह ताला पर ना रह जाए, यानी लोग ये ना कहें कि अल्लाह हमारे पास किसी को भेजते ना फिर हम उसकी बात मानते, अल्लाह ने तो हुज्जत तमाम कर दी, अब लोग फ़ायदा उठाएं या ना उठाएं। और अल्लाह ताला बड़ा गालिब और बड़ा बाहिकमत है, जो कुछ आपकी तरफ उतारा है इसके बारे में खुद अल्लाह गवाही देता है कि इसे अपने इल्म से उतारा है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और अल्लाह ताला बतौर गवाह काफ़ी है। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से औरों को रोका, वो यकीनन गुमराही में दूर निकल गए। जिन लोगों ने कुफर किया और जुल्म किया, इन्हें अल्लाह ताला हरगिज़ हरगिज़ ना बख्शेगा और ना इन्हें कोई राह दिखाएगा सिवाय जहन्नुम की राह के। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिन्हुम, चुपके चुपके अपने लिए दुआएं भी मांगा करें, कुरान पढ़ने के दौरान दुआएं कबूल होती हैं। फरमाया वो जहन्नुम जिसमें वो हमेशा पड़े रहेंगे, और ये अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है। ए लोगो, या अय्युहन्नास, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर रसूल आ गया, बस तुम ईमान लाओ ताकि तुम्हारे लिए बेहतरी हो, और अगर तुम काफिर हो गए तो अल्लाह ही की है हर वो चीज़ जो आसमानों और ज़मीन में है, और अल्लाह ताला दाना और हिकमत वाला है। या अहलल किताब, ए अहले किताब, अपने दीन के बारे में हद से ना गुजर जाओ और अल्लाह पर सिवाय हक के कुछ ना कहो। मसीह इब्ने मरियम तो सिर्फ़ अल्लाह के रसूल और इसके कलमा कुन से पैदा शुदा हैं, जिसे मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ डाल दिया गया था, और इसके पास की रूह हैं, इसलिए तुम अल्लाह को और इसके सब रसूलों को मानो और ना कहो कि अल्लाह 3 हैं, इससे बास आ जाओ कि तुम्हारे लिए बेहतरी है। अल्लाह इबादत के लायक तो सिर्फ़ एक ही है और वो इससे पाक है। किसकी औलाद हो इसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह ताला काफ़ी है काम बनाने वाला। क्या पता चला इस एक रुकू में अम्बिया कराम के प्यारे प्यारे नामों का गुलदस्ता था। किसी ने गिने कितने नाम हमने पढ़े? बाद में जाकर गिनिएगा। और इससे एक और बात पता चलती है कि अल्लाह ताला हमारे कुफर और ईमान से बेनियाज है। सारे कुफर पे चले जाएं, अल्लाह की शान में ज़रा कमी ना होगी, और सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, अल्लाह को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह किसी के वोटों से नहीं इलेक्ट होता, वो तो ख़ुद अपनी शान में बेहतरीन है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें उसकी शान को समझने वाला बना दे। फिर इसमें रसूल की रिसालत का मकसद बशीरम व नज़ीरा, जन्नत की खुशखबरियाँ देने और जहन्नुम से डराने वाले। आपके मेरे लिए इस रुकू में अल्लाह की रज़ा को पाने के काम क्या थे? पहली बात, लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना। बुलाते हैं आप तो बुलाते रहिए, अल्लाह आपकी बात में असर डाल दे। नेक अमाल पर खुशखबरियाँ सुनाना, बुरे अमाल पर वईद सुनाना। नाहक बातें मंसूब नहीं करनी चाहिए, दीन में गलूव ना करना और रसूलों पर ईमान लाना। ये जो बात अभी पढ़े ना, बशीरम व नज़ीरा, मुझे तो नबी सल्लम के साथ साथ सहाबा की ज़िंदगी की जो सबसे प्यारी चीज़ जिससे अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो यही थी कि वो अल्लाह की तरफ बुलाते थे। तौहीद क्या है कि हशर के दिन बंदा अल्लाह को कह दे सारा जहाँ खफा मुझसे तेरे लिए। आपकी मेरी ज़िंदगी का मकसद लोगों को अल्लाह से जोड़ना। दुहाइयाँ दीजिए, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, और फिर उसके बाद कोई आए ना आए, आपकी बेटियाँ भी आती हैं कि नहीं आती, आपकी बहुएँ भी आती नहीं आती, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपको सुरखरू करेगा। और ऐसे भी ना कहा करे जाकर गुस्से में कि तुम्हारे तो नसीब में नहीं है और तुम तो नहीं, प्यार से मोहब्बत से तड़प के। आगे चलते हैं, रुकू नंबर 4 है, आयत 172 से 176। अल्लाह की ग़ुलामी में निजात है। लई यस्तन की फल मसीह हो यकून अब्दुल्ला, हज़रत मसीह को अल्लाह का बंदा होने में किसी किस्म की कोई शर्म नहीं या तकबर नहीं, और इनकार तो हरगिज़ हो ही नहीं सकता। और ना मुकर्रब फरिश्तों को इसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकबर और इनकार करे, अल्लाह ताला इन सब को इकट्ठा अपनी तरफ जमा करेगा। बस जो लोग ईमान लाए और शाइस्ता अमाल किए, इनको इनका पूरा पूरा सवाब इनायत फरमाएगा और अपने फजल से इन्हें और ज़्यादा देगा। और जिन लोगों ने इसमें कोई शर्म महसूस की और सरकशी की और इनकार किया, इन्हें अलमनाक अजाब देगा। और वो अपने लिए सिवाय अल्लाह के कोई हिमायती दोस्त और मददगार यानी इमदाद करने वाला ना पाएंगे। अल्लाह ताला हर चीज़ से बेनियाज है, उसको बिल्कुल किसी चीज़ की तलब नहीं है। ऐ लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सनद और दलील आ पहुंची, और हमने तुम्हारी जानिब साफ और वाज़े नूर उतार दिया। किसको कहा जा रहा है? ये प्यारा कुरान का नूर जिससे अल्लाह ताला ने आपको मुझे फैजयाब कर दिया। आप देखिए कुरान में जहाँ जहाँ कुरान को नूर कहा जाता है, दिल खिल जाता है। दिल करता है कि कुरान का ये नूर घर घर रोशनी फैला दी जाए। और किस तरीके से लोग इसके बगैर अंधेरों में ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन उन बेचारों को नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी का असल हदफ इस किताब से मिलना है। तो आज वो लोग जो डिप्रेशन में हैं, जो किसी भी जगह परेशान बैठे हैं, उन तक कुरान का ये नूर पहुंचा कर उनकी दुआएं लीजिए। यकीन करें आपकी कब्र तक रोशन हो जाएगी, इतनी दुआएं लोगों को मिलती हैं। लोग पूछते हैं कुरान पढ़ने जाते हैं, पढ़ाते हैं, क्या मिलता है? और लोग सोचते हैं कि इल्म मिलता है। मैं कहती हूँ दो चीज़ें मिलती हैं इस रस्ते में। सवाब तो अल्लाह के पास है ना, वो तो जाएंगे तो मिलेगा। दुनिया में आपको एक मोहब्बत मिलती है और एक दुआएं मिलती हैं, करवटों पे दुआएं। हरम में जो जाता है स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हरम से मुझे मैसेजेस जब आते हैं तो मेरा तो दिल करता है मैं फूट फूट के रोऊं और ज़मीन में चली जाऊं कि हमें रोना आ रहा है, हमें आप याद आ रहे हैं, कुरान समझ आ रहा है, लफ्जी तर्जमा पढ़ा, अभी तो सिर्फ दो पारे पढ़े थे, और एक एक चीज़ से क्लास की यादें आती हैं। वहाँ बैठ कर वो आपके लिए दुआएँ करते हैं। कई दफ़ा रात को सोते में आँख खुल जाती है, कभी मैसेज चेक कर लो देखो तो उसमें दुआएँ होती हैं, और मैं रो पड़ती हूँ, अल्लाह हम तो सो रहे हैं अपने पूरे आराम से सो रहे हैं, और कोई आपके लिए बैठा इस होकर दुआएं कर रहा है। कोई कहता है मैं तहज्जुद में करता हूँ, कोई कहता है अपनी माँ के साथ आपकी दुआ करता हूँ। ये किसको मिलती हैं? लोगों की तलब, लोगों की हिदायत की तलब, उनसे मोहब्बत, उनका ख्याल करें। तो आपकी नस्लें संवर जाती हैं जब आप अल्लाह के दीन के साथ जुड़ जाते हैं। और क्या लेना है इसमें आपको, और तलब भी क्या है? लेने वालों को पूछिए ज़रा क्या पूरी पड़ी किसी की। तो अल्लाह ताला कहते लोगों ये रोशनी है, और मैं अक्सर इस मौजू पे जज्बाती हो जाती हूँ कि आज अंधेरे में ठोकरें खा रहे हैं हम, लेकिन कुरान कल नूर नहीं चलाना चाहते। तो दोबारा सुनिए इस आयत को इस कॉन्टेक्स्ट में, या यूहन्नास, ए लोगो, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सनद और दलील आ पहुँची और हमने तुम्हारी जानिब साफ और वाज नूर उतार दिया। बस जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए और इसे मजबूत पकड़ लिया, इन्हें तो वो अनकरीब अपनी रहमत और फजल में ले लेगा और इन्हें अपनी तरफ की राह रास्त दिखा देगा। तड़प के दुआ कीजिए, अल्लाह हमें अपना रास्ता दिखा दें, और अगर दिखाया हुआ तो मरते दम तक इस पे चलाना। अब सूरत के ततीमे की तरफ है, आपसे फतवा पूछते हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है। अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और एक बहन हो, तो इसके छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा है और वो भाई इस बहन का वारिस होगा अगर इसके औलाद ना हो। बस अगर बहनें दो हों तो इन्हें कुल छोड़े हुए का दो तिहाई मिलेगा, और अगर कई शख्स इस नाते के हैं, मर्द भी और औरतें भी, तो मर्द के लिए हिस्सा है मिसल दो औरतों के। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है कि ऐसा न हो कि तुम बहक जाओ, और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। कलाला, अल्लाह ने कौन सा मसला कुरान में बयान नहीं किया आपने? मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लोगों की विरासत किस सूरत में भाई या बहन को मिल सकती है। अल्लाह ने आपकी सूरत में उसको भी बयान कर दिया। हदीस सुन लीजिए, बुखारी की रिवायत है 3445, हज़रत उमर से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे मेरे मर्तबे से ज़्यादा ना बढ़ाओ। गलू, इस रुकू में हमने गलू की बात की, यानी एग्जैजुरेट कर देना या मुकाम को बढ़ा देना या कम कर देना। कहा कैसे ना बढ़ाओ, जैसे ईसा इब्ने मरियम को नसारा ने इनके रुतबे से ज़्यादा बढ़ा दिया। मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ, इसलिए सिर्फ यही कहा करो मेरे मुतल्लिक कि अब्दुहू व रसूलुहू, अल्लाह का बंदा और उसका रसूल। तो क्या पता चला कि नबी सल्लम से मोहब्बत तो करनी है, लेकिन आपके मुकाम में कमी बेशी नहीं करनी। फिर आयत 170 से 173 में एक फ्लो चार्ट देखिए कि अल्लाह के नबी पर ईमान लाने की दावत मिली, ईसाइयों को एतदाल पर रहने यानी बैलेंस रहने की दावत दी गई, और फरिश्ते भी अल्लाह की इबादत करते हैं तो मैं क्यों ना करूं। फिर आयत 174 में कुरान पाक अल्लाह ताला की मुकम्मल दलील और इतमाम हुज्जत है, और कलाला के मसाइल पे विरासत के मसाइल पूरे हुए। बस पूरे कुरान में अब इनका तذکرہ नहीं मिलेगा, यानी सिर्फ तीन आयतें आपने सूरह निसा में पढ़ी और आज वो हमने रिबात में रूहुल कुरान में भी पढ़ ली, और आखिरी ये एक आयत है। क्या पता चला कि अल्लाह एक नट शेल में बंद करके पूरी इंसानियत के मरने के बाद उनके माल की विरासत देता है, जिस माल के पीछे जाते हो सारी ज़िंदगी, माल जमा करते रहो, यकूल अलब्दू माली माली माली, और अल्लाह ने चार आयतों में सब चुका दिया, और हम आज मरेंगे कल दूसरा दिन सब भूल जाएंगे, लोग ले जाएंगे आपका मेरा माल, आपके मेरे घर में कोई और आके रहेगा, हमारे कपड़े कोई और ले जाएगा। असल बात यह है कि हमने अपनी दुनिया में अपने हाथों से क्या दिया और क्या मिला। तो अल्लाह ताला हमें अपनी रजा वाले काम करने की तौफीक दे। देखिएगा इसमें से क्या हमें आमाल मिले अल्लाह की रज़ा को पाने के। पहली बात, अल्लाह की बंदगी में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। कहीं भी जाएं, मैं नमाज़ पढूं, जी बिल्कुल पढ़ें, हाय अब मैं ये करूं, हाँ आप करें क्योंकि अल्लाह ने कह दिया। फिर ईमान और अमल सवाले पर अल्लाह के फजल की उम्मीद रखिए, और अल्लाह तला की तरफ से रोशन किताब पर ईमान लाना है, माशर्ती मसाइल को कुरान से समझना है, फिल्मों और ड्रामों से नहीं सीखना, घरदारी और शादी ब्याह और तलाक़ें, फिर तकबर नहीं करना, और अबूदियत की हकीकत को समझना है। अल्लाह ताला आपको मुझे सूरत निसा में से एक एक लफ्ज़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम इससे फ़ायदा उठाएं।